नमस्कार भारत, तारीख 26 मई दिन शुक्रवार। ट्रंप ने दी चीन को चुनौती, चीन ने दिया करारा जवाब। अमेरिका के आला खुफिया अधिकारियों ने कहा भारत कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई। कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर कश्मीर के दौरे पर मिले अलगाववादी नेताओं से, बोले
यदि आज ठोस कदम नहीं उठाए गए तो क्या पता कुछ महीने के अंदर यहाँ की सूरत हाल ऐसे न बन जाए कि और कोई रास्ता नहीं रहे सिवाय कश्मीरियों पर जंग छेड़ना।
होगी अखबारों की समीक्षा भी, और भी सुनवाएंगे बहुत कुछ, लेकिन पहले सुने बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। दक्षिण चीन सागर में चीन के विवादित कृत्रिम द्वीपों के पास अमरीकी युद्धपोत के पहुंचने से एक बार फिर अमरीका और चीन में तनातनी शुरू हो गई है। बुधवार को दक्षिण चीन सागर में अमरीकी युद्धपोत चीन के विवादित कृत्रिम द्वीप के पास पहुंच गया था, जिसे चीन ने चेतावनी देकर लौटाया था। चीन ने अमरीका को उसकी संप्रभुता और समुद्री सीमा का सम्मान करने की चेतावनी दी है। चीन का कहना है कि अमरीका अपनी गलती सुधारे। वहीं अमरीका का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उसके जहाज बेरोक टोक आ जा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो गठबंधन में अमेरिका के सहयोगियों के देशों की निंदा की है और कहा है कि बाकी देशों को अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन देशों को जीडीपी के 2% हिस्सा, लगभग 2% का हिस्सा रक्षा क्षेत्र में खर्च करना चाहिए। ब्रसल्स में नेटो के नए मुख्यालय में अपने संबोधन में ट्रंप ने कहा कि सिर्फ 5 ही ऐसे देश हैं जो अपनी वित्तीय जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हालांकि कई नेटो सदस्य देश ट्रंप के इस आरोप से सहमत नहीं थे। नेटो सम्मेलन में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में नेटो की भूमिका बढ़ाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव पर सहमति जताई गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस संबोधन में ये कहा,
23 of the 28 member nations are still not paying what they should be paying.
28 में से 23 सदस्य देश अभी भी उतना खर्च नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। ये अमेरिका के लोगों और करदाताओं के साथ अन्याय है। इनमें से कई देशों के कई सालों से काफी राशि बकाया हो चुकी है। पिछले 8 साल से ज्यादा समय से अमेरिका सभी नेटो देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा खर्च कर रहा है। ये थे डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन के मैनचेस्टर धमाके के मामले में पुलिस ने अमरीकी जांचकर्ताओं के साथ खुफिया जानकारियां साझा करना दोबारा शुरू किया है। अमरीकी मीडिया में धमाके के स्थल की तस्वीरें लीक होने के बाद ब्रिटेन ने नाराजगी जताई थी और खुफिया जानकारी साझा करने पर रोक लगाई थी। ब्रिटेन में चरमपंथ रोधी पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर मार्क राउली ने कहा है कि अमरीका से मिले आश्वासन के बाद फिर से खुफिया जानकारी साझा की जा रही है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जिन्होंने तस्वीरें लीक की हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने इस मामले में अमेरिका के जस्टिस विभाग और अन्य एजेंसियों को समीक्षा करने को कहा है। ब्राजील के राष्ट्रपति मिशेल टेमेर ने ब्रासिलिया में सरकारी इमारत को आग लगाए जाने के बाद तैनात की गई सेना को वापस बुला लिया है। कल ब्रासिलिया में मिशेल टेमेर के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए थे। प्रदर्शनकारियों ने एक सरकारी इमारत को आग लगा दी थी और तोड़ फोड़ की थी। राष्ट्रपति टेमेर ब्रासिलिया में एक महीने तक सैनिकों को तैनात करने वाले थे, लेकिन एक ही दिन में सेना को वापस बुला लिया गया है। 1985 तक सैन्य शासन में रहने वाले ब्राजील में सैनिकों की तैनाती एक संवेदनशील मुद्दा है। एक प्रेस वार्ता में इस बारे में रक्षा मंत्री राउल जंगमैन ने ये बताया, सुरक्षा बलों को तैनात करने का फैसला ब्राजील के राष्ट्रपति का था, जिसमें रक्षा मंत्री और संस्थागत सुरक्षा के प्रमुख भी शामिल थे। ये फैसला लेना जरूरी हो गया था। चेंबर ऑफ डेप्यूटीज के अध्यक्ष रोड्रिगो माइया इसके लिए जिम्मेदार रही हैं। राउल जंगमैन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्राजील के उत्तर पूर्व में एक जेल में से 31 मीटर लंबी सुरंग से निकलकर 91 कैदी भाग गए हैं। इनमें से 9 को पुलिस ने रियो ग्रांडे दो नॉर्तो राज्य से ढूंढ निकाला है, जबकि बाकी कैदियों की तलाश जारी है। कुछ महीनों पहले ही एक राज्य में 2 विरोधी समूहों के बीच खूनी संघर्ष में 56 कैदी भागने में कामयाब हुए थे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी की पहली सभा नमस्कार भारत आप सुन रहे हैं फैसल मोहम्मद अली से श्रोताओं का स्वागत है नमस्कार। चीन के जरिए दक्षिणी सागर चीन सागर में बनाए गए कृत्रिम द्वीप के पास से एक अमरीकी जंगी जहाज के पहुंचने के बाद चीन अमरीका से खासा नाराज है। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में अमरीकी कमान आने के बाद से चीन सागर में चीनी दावे को पहली बार ऐसी चुनौती दी गई है। अमरीकी मीडिया ने कहा था कि यूएसएस डीवी चीन के कृत्रिम द्वीप से 12 नॉटिकल मील की दूरी पर पहुंच गया था। पूरा ब्यौरा सुने हरिता कांडपाल से।
दक्षिण चीन सागर में चीन की तरफ से बनाए गए कृत्रिम द्वीप के पास पहुंचे अमरीकी युद्धपोत को लेकर चीन ने अमरीका को चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में अमरीका की कमान आने के बाद ये पहली बार है कि दक्षिण चीन सागर में चीन के दावे को चुनौती मिली है। अमरीकी मीडिया में आए सूत्रों के मुताबिक यूएसएस डीवी युद्धपोत चीन के कृत्रिम द्वीप से 12 समुद्री मील की दूरी पर पहुंच गए थे और चीन का कहना है कि अमरीकी युद्धपोत को उसके जल क्षेत्र में बिना अनुमति आने के बाद चेतावनी दी गई थी। हालांकि अमरीका ने कहा है कि वो किसी अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अपना अभियान जारी रख सकता है। अमरीका ने कहा कि वो क्षेत्रीय विवाद में किसी का पक्ष नहीं लेता, लेकिन अमरीका इससे पहले भी विवादित द्वीपों में सैन्य जहाज और लड़ाकू विमान भेजता रहा है। अमरीका का कहना है कि सागरों और हवाई क्षेत्रों में वो नौ वाहनों की बेरोकटोक आवाजाही का समर्थक है, जबकि चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा पेश करता रहा है। दूसरे देश भी दक्षिण चीन सागर के द्वीपों पर दावा करते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लुकांग ने हाल की अमरीका की इस कार्रवाई की निंदा की है। अमेरिका के इस कदम से अमेरिका और चीन के बीच हो रही बातचीत में काफी रुकावटें पैदा होंगी। इससे नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं होगा। चीन की संप्रभुता, सुरक्षा और समुद्र सीमा के हितों को बचाने की प्रतिबद्धता बनी हुई है। हम अमेरिका से पुरजोर तरीके से अपील करते हैं कि वो अपनी गलती को सुधारे और चीन की संप्रभुता और सुरक्षा के हितों को नुकसान पहुँचाने और उकसाने के काम को रोके। अमेरिका को क्षेत्र की शांति, स्थिरता और अमेरिका चीन के बीच सहयोग को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लुकांग के शब्द। चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप और सैन्य अड्डा बनाने के बाद से इस विवाद को और हवा मिली है। चीन और अमेरिका एक दूसरे पर दक्षिण चीन सागर में सैन्यकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाते रहे हैं। दक्षिण चीन सागर का विवाद एक वैश्विक चिंता का रूप ले चुका है। पिछले साल फिलीपींस की शिकायत पर एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने कहा था कि दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावों की कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं मिलते हैं। हालांकि चीन ने इसे खारिज कर दिया था और कहा था कि वो इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है।
दक्षिणी चीन सागर पे अमेरिका और चीन के बीच तनाव। पूरा ब्यौरा सुना रही थी हरिता कांडपाल। अमेरिका के दो उच्च खुफिया अधिकारियों ने भारत और पाकिस्तान के बढ़ते आपसी तनाव पर चिंता जताई और कहा कि भारत सीमा पार आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को अलग थलग करने और उसे सबक सिखाने की कार्रवाई पर गौर कर रहा है। उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान उन चरमपंथी गुटों पर लगाम कसने की में नाकाम रहा है जो अमरीकी हितों को नुकसान पहुंचाते हैं और भारत और अफगानिस्तान पर हमले करते हैं। मैंने बात की वाशिंगटन संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय से और पूछा कि अधिकारियों ने भारत और पाकिस्तान को लेकर क्या कुछ कहा।
देखें, कांग्रेस में अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस के प्रमुख और डिफेंस इंटेलिजेंस के प्रमुख ने दुनिया पर जो खतरे हैं उनका एक आकलन पेश किया इस हफ्ते, और उसमें उन्होंने कहा है कि भारत में जो चरमपंथी हमले हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, उससे भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों में खासा तनाव बढ़ा है। और भारतीय कश्मीर में फौजी छावनी पर चरमपंथी हमले के बाद भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा के पार जाकर चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। उनका यह भी आकलन था कि भारत कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश जारी रखने और सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को सबक सिखाने और उसकी कीमत का एहसास करवाने के लिए कार्रवाई पर गौर कर रहा है। इस बयान में यहां ये मैं बताना चाहूंगा कि ये कहीं नहीं कहा गया है कि भारत सीमा पार घुसकर कार्रवाई करने की सोच रहा है, जैसा कि कुछ पाकिस्तान और भारत के अखबारों में छपा है। पाकिस्तान के बारे में उनका आकलन था कि पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे चरमपंथी गुटों पर बढ़ते दबाव की वजह से संभव है कि वहां जो सॉफ्ट टारगेट हैं पाकिस्तान में, उन पर हमले हो सकते हैं। और साथ ही उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों में खासा इजाफा कर रहा है, और खासतौर से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स या ऐसे परमाणु हथियार जिन्हें बड़ी आसानी से युद्ध में इस्तेमाल किया जा सकता है या डिप्लॉय किया जा सकता है, और उनकी सुरक्षा एक बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन पाकिस्तान उसे मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रहा है। तो कुल मिलाकर भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बारे में काफी हद तक वही बातें कही गई हैं जो पिछले एक दो सालों में हम सुनते आए हैं, लेकिन हाल के दिनों में जो सीमा पर कार्रवाई हो रही है दोनों तरफ से, उसके मद्देनजर ये बयान काफी सुर्खियों में आ रहा है।
ब्रजेश उपाध्याय, ये भी बताएं कि ये जो बयान है या ये जो उच्च अधिकारियों ने कहा है, ये खास तौर पे कैसे वक्त में आया है जबकि अमेरिका अफगानिस्तान के संदर्भ में अपनी पॉलिसी अनाउंस कर सकता है या उसके बारे में सोच रहा है?
नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। इस वक्त व्हाइट हाउस अपनी अफगान नीति को अंतिम स्वरूप देने की तैयारी में है और अंदाजा है कि ये बहुत जल्दी इसका ऐलान हो सकता है, और उसके तहत भारत और पाकिस्तान दोनों ही के किरदारों की चर्चा हो रही है। सेनेट की इसी हियरिंग में खुफिया अधिकारियों का कहना था कि पाकिस्तान भी अमरीका की तरह ही एक सुरक्षित, एक स्टेबल अफगानिस्तान चाहता है, लेकिन तभी तक जब तक कि वहां भारत का प्रभाव नहीं रहे। उनका कहना था कि पाकिस्तान की अफगान नीति भारतीय चश्मे से देखी जा रही है, और इसलिए वो आतंकवादी संगठनों को एक रिजर्व की तरह रख रहा है कि अगर अफगानिस्तान भारत की तरफ ज्यादा झुकता हुआ नजर आया तो वो इन संगठनों का इस्तेमाल कर सके, जिससे पाकिस्तान के हितों पर आंच न आए। और उनका कहना था कि अमरीका की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो पाकिस्तान को समझा सके, ये पैगाम दे सके कि अफगानिस्तान की बेहतरी पूरे इलाके के लिए एक अच्छी खबर होगी।
वॉशिंगटन से बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
भारतीय जनता पार्टी नेताओं का दलितों के घर जाना और उनके साथ भोजन करने का मामला बार बार विवादों में आ रहा है। दक्षिण भारत की ही बात करें तो पहले येदुरप्पा और अब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के तेलंगाना दौरे और दलितों के घर खाना खाने पर बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
बीजेपी के नेता और दलित के घर पर खाना नहीं खाना एक बड़ा मुद्दा बने लगा है। पिछले हफ्ते कर्नाटका के बीएस येडियुरप्पा एक दलित के घर गए, लेकिन उन्होंने होटल का खाना खाया। इस पर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हुई। दो दिन से वो युद्ध तेलंगाना पहुंच गया है, क्योंकि पिछले तीन दिन से उस राज्य में अमित शाह दौरा कर रहे थे। उन्होंने वहां ये इल्ज़ाम लगाया कि केंद्र सरकार ने तेलंगाना को 20,000 करोड़ रुपये दिए, जिस पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अमित शाह को आड़े हाथ लिया। चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना को केंद्र से 200 करोड़ भी नहीं आए और इसलिए अमित शाह को माफ़ी मांगना चाहिए। उसके साथ चंद्रशेखर राव ने यह भी कहा कि अमित शाह दलित के घर गए, लेकिन उन्होंने दलित का खाना नहीं खाया। जो दोपहर का खाना उन्होंने दलित के घर खाया, वो खाना असल में एक ऊंची जाति का शख्स बनाकर लाया था। उस शख्स का नाम है मनोहर रेड्डी, जो खम्मागुडम गाँव के हैं। इसीलिए नलगुंडा जिले के टेरटपल्ली के दलित नाराज हैं। ये थे के चंद्रशेखर राव के शब्द। चंद्रशेखर राव ने ये भी कहा कि दूसरे दिन भी अमित शाह ने एक होटल से मंगाया हुआ खाना एक दलित के घर पर खाया, और तीसरे दिन क्योंकि दलित नाराज थे, उन्होंने मुंगेर में एक दलित के घर में खाना खाया। लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता शेषाद्री चारी ने बीबीसी को बताया,
ये तो फिजूल की बातें हैं। ये ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत बड़ा आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय हम इस आरोप के प्रत्यारोप में जाना ही नहीं चाहते हैं। दलितों के विषय में हमारे मन में पीड़ा है, दलितों के विषय में हमें लगता है सामाजिक जो स्थिति है उसकी सुधरनी चाहिए।
तो ये विवाद क्या मायने रखता है तेलंगाना जैसे राज्य में? हमने ये सवाल वरिष्ठ पत्रकार टंकशाला अशोक से पूछा।
दिस पर्टिकुलर इश्यू ऑफ द फूड बीइंग कुक्ड एल्सवेयर एंड हिज डाइनिंग विद दलित फैमिली।
अमित शाह का मकसद यही है कि बीजेपी तेलंगाना में चौथे स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचे, और बीजेपी के नेता ये भी नहीं कह रहे हैं कि जो चंद्रशेखर राव ने कहा है वो गलत है। बात इतनी है कि चंद्रशेखर राव को पसंद नहीं कि बीजेपी तेलंगाना में तरक्की करें। ये थे तंगशाला शो के शब्द। मतलब ये कि बीजेपी के नेता दलितों के घर जाकर उनके साथ मिलने की कोशिश करते ही रहेंगे ताकि वो एक दिन चुनाव में उनको वोट दें। खाना खाने और ना खाने का विवाद अपनी जगह बना ही रहेगा। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के उदारवादी धड़े के प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक और दूसरे कई अलगाववादी नेताओं से मुलाकात की है। साथ ही वो मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और राज्यपाल से भी मिले। श्रीनगर में हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर ने मणिशंकर अय्यर से बात की और उनसे इस पहल के बारे में जानना चाहा।
आपने बातचीत नहीं किया तो मौजूदा स्थिति सूरत हाल और भी बिगड़ेगा। आज के दिन लगता है कि जाकिर मूसा के पीछे लोग अब जुड़ रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि गिलानी से न बात करने से जाकिर मूसा आ गया है तो आप उनसे बात करोगे क्या? ये एक सियासी मसला है और जाकिर मूसा ने कहा कि वो जो कहते हैं कि ये एक सियासी मसला है, हम उनके गर्दन काटेंगे, क्योंकि ये सियासी मामला नहीं है, ये इस्लाम और गैर इस्लामियों के बीच में सवाल है। यदि आज के दिन ठोस कदम नहीं उठाए गए तो क्या पता कुछ महीने के अंदर यहाँ की सूरत हाल ऐसे न बन जाए कि और कोई रास्ता नहीं रहे सिवाय कश्मीरियों पर जंग छेड़।
अच्छा सर, आप कैसे उम्मीद करते हैं एक पॉजिटिव आउटकम की, क्योंकि आपको सेंट्रल केंद्रीय सरकार की तरफ से कोई मैंडेट नहीं है, जो आप कल से यहाँ पे आपका एक डेलीगेशन कश्मीर में।
मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं कश्मीरियों को भारत के नागरिक समझता हूँ, मैं उनके भाई बहन समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि कश्मीर को हम कब्जा में नहीं दे सकते जब तक कि कश्मीरियों को हम अपने साथ में जोड़ें।
अच्छा, अभी सर होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि रिसेंटली उन्होंने कहा कि वो कश्मीर के लिए एक परमानेंट हल निकालेंगे। क्या हल हो सकता है वो?
3 साल से तो नहीं निकाल पाए, कहा था कि महीने के अंदर हम करेंगे। मैं इन पर कोई भरोसा नहीं रखता हूँ और राजनाथ सिंह कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी पार्टी दबी हुई है मोदी जी के तानाशाही पर। लेकिन मैं कोई भरोसा नहीं रखता हूँ न हमारे प्रधानमंत्री पर न हमारे गृह मंत्री पर कि कश्मीर का मसला उनकी तरफ से हल हो सकता है। 2 साल हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और मोदी की सरकार पलटने पर शायद हम आगे बढ़ पाएंगे।
तो आपका फार्मूला क्या है पीस अचीव करने का कश्मीर का? ठीक,
एक ही है कि फार्मूला हम आगे से न बताएं, बातचीत के जरिए फार्मूला खुद ब खुद निकल आएगा और खुदा करे कि पाकिस्तान से भी हमारी बातचीत शुरू हो जाए, क्योंकि भारत पाकिस्तान का मसला कश्मीर के मसले से जुड़ा हुआ है।
सर, आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अलगाववादियों को किसी तरह का कॉन्सेशन देने पर आमादा होगी?
हरगिज नहीं, क्योंकि केंद्रीय सरकार जानती है कि उनको एक वोट यहाँ कश्मीर में मिले तो 10 वोट जो आरएसएस हासिल कर रही है वो उनसे चुना जाएगा। तो ये लोग अपना हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं।
अच्छा सर, अभी आर्मी मेजर को सम्मानित किया गया, फारूक डार को जिन्होंने जीप से बांधा था, ह्यूमन शील्ड बनाया था। आपकी सरकार होती कांग्रेस की तो आप भी ऐसा करते?
कतई नहीं और कतई कभी नहीं। अब तो ये हो रहा है क्योंकि ये सोच रहे हैं कि कश्मीरियों को धमकियों से दबा सकते हैं और ये बिल्कुल गलत सोच है।
सर, जो राज्य सरकार है महबूबा मुफ्ती की कयादत में जो सरकार है, आपको लग रहा है कि वो हर सतह पर नाकाम हो गई है कश्मीर को, कश्मीर के हालात को पटरी पर लाने के लिए?
वो उनकी कयादत में है क्या? मुझको तो लगता है कि यहाँ का मुख्यमंत्री तो नरेंद्र मोदी है।
मणिशंकर अय्यर से बात की थी माजिद जहांगीर ने। और अब माजी जहांगीर से जब बात कर रहे थे मणिशंकर अय्यर, हरिता, तो बहुत सारी बातें मोदी को लेकर उन्होंने कही और मोदी सरकार पर, क्या इस पे कुछ छपा है अखबारों में आज?
आज नरेंद्र मोदी की सरकार को 3 साल पूरे हो रहे हैं और
अच्छा शपथ ग्रहण किए हुए।
जी बिल्कुल, और सारे ही अखबारों का पहला पन्ना जो है केंद्र सरकार के, भारत सरकार के विज्ञापन से जो है पटा हुआ है, और उसमें गौरव की बात की गई है, 3 साल पूरे हो रहे हैं और विकास की बात की गई है। लेकिन दैनिक भास्कर और टाइम्स ऑफ इंडिया में देख रही हूँ काफ़ी विस्तार से उन्होंने जो है सर्वे किया है और फिर उनके कामकाज को मार्क्स दिए हैं। तो दैनिक भास्कर लिखता है कि 83% लोग जो है सर्जिकल स्ट्राइक से बहुत खुश हैं, यानी मोदी सरकार के सबसे अच्छे कामों में
पर जो दावा किया था भारत सरकार,
सर्जिकल स्ट्राइक को सबसे ज़्यादा नंबर दिए गए हैं और उसमें मोदी सरकार से खुश हैं लोग। और 52% लोग जो है नोटबंदी करने के तरीके से नाराज हैं, मतलब वो सबसे खराब काम उनका,
52%, मतलब आधे से अधिक जनता।
जी जी जी, वो एटीएम और बैंक के बाहर जो लाइनें लगी थी उसका नतीजा है ये। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि मोदी सरकार के पास काफ़ी कुछ है सेलिब्रेट करने के लिए, खुशी मनाने के लिए। उसने फुल मार्क्स जिसे कहते हैं पूरे अंक जो दिए हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है इसमें कि एक तो आमदनी, कीमतों और सेंटिमेंट, भावनाओं को लेकर जो है वो मोदी सरकार को फुल मार्क्स दिए गए हैं। और निवेश और नौकरियों को लेकर जो उसमें आधे यानी कि 50% मार्क्स मोदी सरकार को दिए गए।
टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया मान रहा है कि निवेश भी कम हुआ है और नौकरियों तो सुना है कि हाल के दिनों में सबसे कम हुआ है, ये तो भारत सरकार की अपनी रिपोर्ट ने माना है।
जी, इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये भी लिखा है कि राष्ट्रवादी गौरव में तो बढ़ोतरी हुई है लेकिन उसमें जो है ध्रुवीकरण की एक धार भी उसके साथ जुड़ी हुई है, बिल्कुल तेज़ हुई है। तो ये तो मोदी सरकार के 3 साल और उसकी बात। इसके अलावा जो खबर सब जगह छाई है वो है कि ग्रेटर नोएडा में बलात्कार कांड कल जो सामने आया है, यमुना एक्सप्रेसवे पर 4 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार, हिंदुस्तान टाइम्स ने ये खबर दी है पहले पन्ने पर। लिखा है कि जो एक पुरुष रिश्तेदार था उसको गोली मार दी गई और बुलंदशहर जा रहे थे ये लोग, 6 लोगों का गैंग था जिन्होंने लूटपाट की और बलात्कार किया और हत्या भी की है। द स्टेट्समैन ने एक खबर दी है कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से ईवीएम के मदरबोर्ड की हैकिंग की इजाज़त मांगी थी लेकिन चुनाव आयोग ने इसे खारिज कर दिया है। आम आदमी पार्टी और अन्य दलों के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने जो है वो चुनौती दी है ईवीएम को हैक करने के लिए, लेकिन उसमें आम आदमी पार्टी की कुछ खास मांगे हैं। और इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि सीबीएसई के जो नतीजे 12वीं के परीक्षा के नतीजों को लेकर जो असंशय बना हुआ था उसमें मानव संसाधन विकास मंत्री जो है जावड़ेकर, उन्होंने कहा है कि समय पर ही नतीजे आएंगे। सीबीआई की जो मॉडरेशन पॉलिसी है उस पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने की बात कही गई थी लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक हो सकता है कि अब सीबीएसई चुनौती ना दे सुप्रीम कोर्ट में।
बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए हरिता।
बीबीसी इंडिया बोल।
नरेंद्र मोदी सरकार के 3 साल का हासिल क्या है? अच्छे दिन का वादा करके सत्ता में आई थी बीजेपी, क्या वो सपना पूरा कर पाए हैं नरेंद्र मोदी? अपनी राय रखें बीबीसी इंडिया बोल में। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 27 मई शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
मोदी सरकार के 3 साल बीतने पर जो खास रिपोर्टें हम आपको सुनवा रहे हैं उसमें आज की कड़ी में सुनेंगे स्वच्छ भारत की, जिसका इनॉग्रेशन और जिसका ऐलान खुद जोर शोर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और सरकार इस नाम पर जनता से कर भी ले रही है। आज की पड़ताल कर रहे हैं नितिन श्रीवास्तव।
चिलचिलाती धूप में एक पतली सी सड़क आपको वाराणसी इलाहाबाद हाईवे से नागेपुर पहुँचाती है। इस गांव को सांसद नरेंद्र मोदी ने गोद लिया है। गांव में घुसते ही गरीबी का एहसास आपको हिला कर रख देगा और इस हरिजन बस्ती वाले अपनी जात को कोसते हुए ये बात कहने से कतराते भी नहीं। आबादी पूछने पर 1000 के करीब बताई जाती है और लोग तुरंत उसे हरिजन, यादव, मौर्य, पटेल और राजभर बस्ती में बांट देते हैं। मिट्टी से पुते कच्चे घर भी हैं और ढूंढने पर घरों में बिजली के तार भी दिख जाते हैं। एक घने बरगद की छांव में बेंत से बिनी चारपाई पर चाय सुड़कते हुए चर्चा योगी आदित्यनाथ के शासन पर हो रही है। एकाएक मेरे टैक्सी ड्राइवर पूछ बैठे, बाथरूम कहाँ है हो? नागेपुर के ये सभी निवासी मुस्कुरा उठे और दो ने खेत की तरफ इशारा कर दिया। प्रभु पटेल ने बताया,
हम लोग 4 भाई हैं, 4 भाई में से कोई भी पैखाना नहीं है। हम लोग खेत में जाते हैं और कम से कम 10 दिन तो प्रधान से भी कहत होगा, नहीं बनत बा नहीं मिलत बा तब ओके हम का बताएं।
गांव के भीतर पहुंचे तो एक बड़े लेकिन गंदे कुएं के इर्द गिर्द 4 महिलाएं मशक्कत कर रही थीं। कोई आधा किलोमीटर से आई थीं, कोई अपने दूध पीते बच्चे को उसकी 7 साल की बड़ी बहन की निगरानी में छोड़कर। अंजू देवी ने अपनी बाल्टी भरकर हमें बताया,
बाथरूम पहले तो है नहीं बा, ओकरे बाद पानी या कुआँ से पियात बा पानी यह बा कुआँ में सब लोग काढ़त बा हम लोग सब कोई बहरे नहाला बाथरूम है ये नहीं बा नहीं अगर नागपुर में एक हैंड पाइप नहीं है।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जिन दो गांवों को गोद ले रखा है उनमें से एक नागेपुर है और दूसरा जयापुर। 2014 में ही नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी और उसका अहम लक्ष्य है 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त कराना। इस अभियान में केंद्र सरकार से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2019 तक इस योजना पर 2,00,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हो जाने का अनुमान है, जिसमें से 2,500 करोड़ सिर्फ पब्लिक स्कूलों में शौचालय बनवाने पर ही खर्च होगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब भारत में एक बड़े स्तर का सफाई अभियान चला हो। निर्मल भारत अभियान या फिर 1986 में भारत सरकार का सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम चल चुके हैं, जिसे 1999 में धीमी रफ्तार होने के कारण टोटल सैनिटेशन कैंपेन में बदल दिया गया था। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी के इन दोनों गोद लिए गांवों में सैकड़ों शौचालय पहुंच चुके हैं। नागेपुर से करीब 20 मिनट की दूरी पर है जयापुर गांव, जिसे मोदी ने 3 सालों से गोद लिया है। हाईवे से उतरकर गांव जाने वाली सड़क पहले 3 किलोमीटर तो खड़ंजे वाली है, लेकिन अगले 5 किलोमीटर तक ये सड़क किसी भी टॉप सड़क को चुनौती दे सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि जयापुर में नागेपुर की बदौलत कहीं ज्यादा शौचालय दिखे, लेकिन ज्यादातर को करीब से देखने पर दिखता है कि इन सभी के पिट या गड्ढे इतने कम गहरे हैं कि बहुत जल्द भर जाएं और शायद इसी वजह से गांव वाले नाराज हैं। चमेला देवी ने कहा कि काम मन से नहीं किया गया लगता है।
सब जितना बिटिया पतो हैं सब बाल्टी में पानी ले ले जाला, केहू में नहीं आवे डिब्बा में बाल्टी में अपन पानी भर के तो बैठा ला। जब भर जाए तो 5-5 फुट जेकर ढेर पलवार बा है 5 फुटे में तार जिंदगी बीती आई 5 फुट खाली गढ़ा खनल हो।
इन दोनों गांवों में जो सबसे बड़ी दिक्कत दिखी वो ये कि बक्सा नुमा इन शौचालयों में से अधिकांश में पानी पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं। साथ ही हजारों गांवों की तरह इन दोनों में भी सीवेज लाइनें नहीं बिछी हैं। जयापुर निवासी और 2 बच्चों के पिता संजय सिंह हमें गाँव में घूमता देख कर खुद ब खुद चले आए। संजय सिंह ने कहा,
सर यहाँ पे जो लैट्रिन बनाई गई है इस लैट्रिन में एयर निकालने का कोई मतलब जगह ही नहीं दिया गया है। इसमें अगर आदमी बैठ जाता है 10 मिनट भी लैट्रिन करने के लिए हम लोग बैठते हैं तो ऐसा होता है महसूस कि चक्कर आ जाएगा और आदमी का दम घुट जाएगा उसी में। हमारे यहाँ जल निगम का काम चालू हुआ है, यहाँ पर हम लोग बहुत खुशी हुए कि प्रधानमंत्री जी हमारे गाँव को गोद लिए हैं और यहाँ पर तमाम पैसा इन्वेस्ट किया गया हमारे गाँव में, लेकिन थर्ड क्लास क्वालिटी की पाइप डाली गई जिससे एक दिन हम लोगों को 1 लीटर भी पानी नहीं मिला।
हालांकि इस जगह से सिर्फ 0.5 किलोमीटर आगे एक मेड़ पर बैठकी लगाए हुए हमें जयापुर के प्रधान भी मिल गए। नारायण पटेल ने बताया पिछले 3 सालों में यहां करीब 600 शौचालय बने हैं।
हाँ तो उनकी कमी है ना, इसके लिए समझा गया कि नहीं इसका यूज करिए, ये लकड़ी या गोहरी रखने के लिए नहीं है, ये शौच के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन बताया ना कि वही 8-10 लोग हैं जो प्रेरित करते रहते हैं, उनके जो लोग हैं।
कुछ एक हमें ऐसे भी टॉयलेट मिले हैं अंदर जहां पर जिनके दरवाजे टूटे हुए हैं, उनको दोबारा कौन बनाएगा?
तो हमारा फर्ज होता है, हमारा दायित्व तो बनता है कि उसका उपयोग हम करते हैं तो उसका मेंटेनेंस भी हमको करना चाहिए।
2 दिन यहां घूमने के बाद मुझे शौचालयों के रखरखाव और उनमें पानी की किल्लत की शिकायत करने वालों की तादाद तारीफ करने वालों से ज्यादा मिली। हालांकि वाराणसी में मेरी मुलाकात कुछ ऐसी महिला समाज सेविकाओं से भी हुई जिनके मुताबिक स्वच्छ भारत अभियान के चलते स्कूलों में शौचालय बनवाने से स्कूली छात्राओं की बहुत बड़ी मुश्किल हल हुई है। वैसे नरेंद्र मोदी सरकार के पास अभी इस योजना को पूरा करने के लिए 2 साल और बचे हैं, लेकिन कुछ वर्षों पहले विश्व बैंक के एक अनुमान के मुताबिक भारत के ग्रामीण इलाकों में आधे से ज्यादा और शहरी इलाकों में करीब 15% लोग खुले में शौच करते थे। 3 साल में क्या बदला है और 2 साल में क्या बदलेगा, इसका सटीक पता चलने में अभी थोड़ा समय और लगेगा। नितिन श्रीवास्तव, BBC वाराणसी।
और अब सुनते हैं खेल, माफ कीजिएगा खेल समाचार हम आपको नहीं सुनवा रहे हैं क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन अंत में सुनिए BBC समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। दक्षिण चीन सागर के में चीन के विवादित कृत्रिम द्वीपों के पास अमरीकी युद्धपोत के पहुंचने पर चीन ने अमरीका को चेतावनी दी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो गठबंधन में अमरीका के सहयोगी देशों की निंदा की और कहा कि बाकी देशों को अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी करनी चाहिए। ब्रिटेन के मैनचेस्टर धमाके के मामले में पुलिस ने अमरीकी जांचकर्ताओं के साथ खुफिया जानकारियां साझा करना दोबारा शुरू कर दिया है। ब्राजील के राष्ट्रपति मिशेल टेमेर ने ब्रासिलिया में सरकारी इमारत को आग लगाए जाने के बाद तैनात की गई सेना को वापस बुलाने का आदेश दिया है। बीबीसी समाचार।
आप हमें खत लिखते रहे, हम जो विशेष रिपोर्टें सुनवा रहे हैं खासतौर पर उसकर, उस पर हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 30035, न्यू दिल्ली 110003। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।